ऐसे हूँ हमारे कर्म, नेकी पर चली और बदी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सूखा सूरज डूबा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुरा ही करें हम भला ही करें, नहीं बदले की हो कामना, बस उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये बरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम।
रमेश जी को धन्यवाद। आज के दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमान देवेंद्र कुमार जी के सुपुत्र बालक देवेश शाह, पधारें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर और दीप प्रज्वलन करें, साथ में उनके माता पिता दिलीप जी और आशा जी भी पधारें।
यही ब्रज के ऊपर से हैं जो कि हम अंधे हैं, हमारे सामने हर एक प्रकार के पर्व आ रहे हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, इस प्रकार वो अंधे के समान है। रेन अंधेरी में एक अंधा पानी भरकर लाता था, और दो मटके सिर ऊपर रखकर धीरे धीरे जाता था। अंधा तो था लेकिन दो मटके ऊपर रखे था, जा रहा था। एक हाथ में लाल चैन ले, एक हाथ में थामे था का घड़े थामे था एक हाथ में, और एक हाथ में लाल चैन ले। तो देख रहे थे मार्ग में सब सूरदास का दृश्य खड़ा ही, सूरदास का जो दृश्य देख रहे थे खड़े मार्ग में, रास्ता में आदमी। कोई बोला एक युवक रे अंधे, यह रचना क्या कीना है, तुझे दिखता नहीं भला, फिर लालटेन क्यों लीना है। कहते तुझे दिख नहीं रहा है और तूने लालटेन काहे से ली है। भैया हम तुम्हें बता रहे कि जो बेटियां तो है, तुम हमसे कहो कि तुमने करो है का, हम वो अंधे के समान है, हम दूसरे को बता रहे, हम तो खुद करो नहीं है और तुम बता रहे हैं। तो कहते तुझे दिखता नहीं भला, फिर लालटेन क्यों लीना है, बिना आंखों के यह प्रकाश क्या मार्ग तुझे दिखावेगा, और उल्टा जनता की नजरों में तू पागल कहलावेगा। जनता की लाने तू उल्टो पागल बना फल रहा है। बोला अंधा रे भाई तू भेद नहीं इसका जाना। ए भैया अब तुम हमसे कछु कह दे रहा हो, देखो हम कह रहे नहीं, भेद नहीं जाना, आने कोई आवे कोई दौड़ा दौड़ा, तुझ सा चंचल मस्ताना। कहते भैया तुमने समझी नहीं है, अगर दौड़ा दौड़ा कोई तुम्हारी मस्तानो दौड़ा तो आवे तो क्या होगा, मेंदा अंधेरी में कहा धक्का उसका लग जावे, वह उठ भग जाएगा पर मैं मेरा घड़ा चूर हो जाएगा। वह तो उठ के भग जाएगा मानो मेरा तो घड़ा ही तो फूट जाएगा। इसीलिए है लालटेन में औरों को दिखलाता हूं। ये भैया इसे हम क्या कह रहे, हम पांव धर रहे हैं अपने शोध शोध, बल लालटेन बता रहे तुम उन्हों की लाने जो नमो आचारी सी ने दिए लालटेन दिखलाता है। इसीलिए लालटेन में औरों को दिखलाता हूं, मुझे बचाकर चला जाएगा धक्का से बच जाऊंगा। ऐसा हम ही को बचने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे कल की लालटेन आपस से मुझे बचाती है और भरी राह चलने वालों को सीधा मार्ग दिखाती है। ये रास्ता है गैल है, इसमें दौड़ते हैं आदमी सब प्रकार के हैं, साध विशेषण भी डूबे हुए हैं और झूठ वचन चोरी सारी बातें कर रहे हैं, हैं? इस मार्ग से कम हम तुम्हारा ने चार बातें सुना है तो हमारे हृदय में बैठे के चार बातें सलावक केला ने बताई थी कि इनमें पाप है। ए भैया हम रास्ता देखें झार के चलें, हम पहने कछु दोष लग जाए जी, हमारे लाने हैं ज्यादा हैं तुम तो हम बता रहे हैं, तुम आ जाए पे तो अच्छे हो। मेरे कर की लालटेन आपस से मुझे बचाती है, भीड़ राह चलने वालों को सीधा मार्ग दिखाती है, योनि पर का भला समझकर मैं यह कार्य करता हूँ, खुद आपस से बचता हूँ औरों की आफत चलती है, मैं भी बच जाता हूँ और दूसरों की आफत भी चल जाती है। युक्त युक्त बच सुन अंधे की नौजवानियों बोला है, बाय बाय रे सूरदास तेरी बुद्धि अनमोला है। कहते धन्य रे, बार बार कहता है तेरी बुद्धि बहुत अनमोल है, ज्ञानी की प्रत्येक बात में तत्व भरा ही रहता है, ज्ञानी की एक एक बात में तत्व भरा रहता है। आप ये नहीं सोचो कि आज तो एक दो ही बातें कही महाराज जी ने, नहीं इसका अर्थ लगाओ, इसमें बहुत तत्व भरा रहता है। और शिक्षक शिक्षा लेते हैं मूर्ख 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 हंसते जाते हैं, शिक्षा लेने वाले शिक्षा लेते हैं और मूर्ख आदमी हंसते जाते हैं कि अरे का हैं। ज्ञानी दुख से बचता है, अज्ञानी भटकता फिरता है। तुम भी भैया लालटेनी धर्म की लेकर देखो तो, तुम भी भैया लालटेनी धर्म की लेकर देखो तो खोटे कर्मों से बच जाओ, खोटे कर्मों से बच जाओ, सही मार्ग पे लग जाओ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
कुछ सूचनाएं
ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंता दीमा। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने, सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम लोगों ने पिछले दिनों एक बात अपने मन में बहुत अच्छे से समझ ली है कि यदि क्रम क्रम से हम अपना जीवन अच्छा बनाते हैं तो एक दिन हम अपने जीवन को तीर्थंकर की हैसियत का भी बना सकते हैं, और यदि हम प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं का निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर वह अच्छाई उद्घाटित हो सकती है। हमें अच्छाइयाँ कहीं बाहर से नहीं लानी है, अच्छाइयाँ हमारे भीतर हैं। सिर्फ इतना है कि हम अपनी उन अच्छाइयों को या तो भूल गए हैं और यह कि वे अच्छाइयाँ हमारी अपनी ही बुराइयों के नीचे दबी पड़ी हुई हैं। यदि हम बुराइयों को हटाते चले जाएं, तो अच्छाइयाँ हमारे भीतर अपने आप प्रकट होती चली जाएंगी। हमने पिछले दिनों एक ऐसी दृष्टि की निर्मलता हासिल की है जिसमें कि हमें प्राणी मात्र के भीतर अपने जैसा ही आत्म तत्व दिखाई देने लगे, और जब अपने और प्राणी मात्र के भीतर आत्म तत्व दिखने लगता है, ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है, ऐसा श्रद्धान हमें हो जाता है, तब फिर प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव ही अपने मन में आता है। और जो जीव प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव रखता है, सबके आत्म द्रव्य को परमात्मा तक ले जाने की कोई प्रक्रिया बताने का भाव जिसके भीतर हो जाता है, वही न तीर्थंकर बनता है। मैं भी अपने आत्म कल्याण की उस प्रक्रिया को हासिल करूं और प्राणी मात्र को भी अपने आत्म कल्याण की प्रक्रिया मालूम पड़े, मोक्ष का मार्ग मालूम पड़े, ऐसी जिसके भीतर ललक होती है, भावना होती है, उसका जीवन तो ऊंचा उठता ही है, उसके जीवन से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। इसी को तो अपन तीर्थंकर बनना कहते हैं, और पहली भावना जो दर्शन विशुद्धि है वो यही है। फिर विनय संपन्नता, शील और व्रतों के प्रति अत्यंत उत्साह, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, शक्ति तस् त्याग, ये सारी बातें उसी में गर्भित हैं, उसी में शामिल हैं। एक चीज आने से सारी चीजें आ जाती, जैसे कि आगे आने वाले दिनों में जब अपन उत्तम क्षमा पर विचार करेंगे तो हमें आश्चर्य होगा कि अरे सारे धर्म इसी में आ गए। किसी भी एक धर्म को हम अपने जीवन में लाते हैं तो सारे धर्म आ जाते हैं, आपो आप आ जाते हैं इसी तरह। लेकिन मुख और गौण, हम किसी को मुख्यता दे देते हैं उस भावना विशेष को, लेकिन उसमें सारी भावनाएँ समन्वित होती हैं। दर्शन विशुद्धि भावना यदि है तो सारी भावनाएं उसके भीतर समाहित हैं, और भी कोई भावना हो षोडश कारण भावना में, उसके साथ दर्शन विशुद्धि होना तो अनिवार्य ही है। इस तरह आज हम देखते हैं कि क्या अपने जीवन को हम तपस्या के द्वारा ऊंचा बना सकते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि शक्ति तस्तप, यह भी हमारे जीवन को उतनी ही ऊंचाई देता है जिस ऊंचाई को तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है। अब शक्ति तस्तप लिखा है तो इसके मायने क्या है, और ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से हम कर रहे हैं, ये उसकी विशेषता है। इतनी चीजों को हमें समझना है। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव बल और वीर, इन सब बातों का ध्यान रख करके जो तप किया जाए वो शक्ति तस्तप कहलाए। यथाशक्ति, यथाशक्ति में तो ये है कि अपन थोड़ी बेईमानी भी कर सकते हैं, नहीं हमारी तो इतना ही शक्ति है, कहते ऐसे नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव बल और वीर, बल तो कहलाता है शरीर का और वीर कहलाती है आत्मा की सामर्थ्य। सो यहां से शुरू करें तो पहले नंबर इस बात पे विश्वास करके चलना पड़ेगा कि मेरी आत्मा की शक्ति तो अनंत है, इसलिए मुझे तप तो जितना बन सके उतना करना है, अधिक से अधिक करना, इसलिए बेईमानी का कोई अवसर नहीं आए। आत्मा की अनंत शक्ति का विचार पहले करना, फिर उसके बाद अपने शरीर का बल भी देख लेना। आत्मा की अनंत शक्ति होते हुए भी कमजोर शरीर होवे तो वो आत्मा की अनंत शक्ति अपना पूरा का पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती, जिसको अपन कहते कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। क्षमता कितनी है यह तो ठीक है, लेकिन संभावनाएं कितनी है, हमारे शरीर से हम कितना कर पाएंगे। शक्ति तो हमारे पास आत्मा में अनंत है, इसलिए कमजोर नहीं पड़ना है करने में, लेकिन जरा देख लेना है कि शरीर का बल कितना है और द्रव्य क्षेत्र काल किस तरह का है। द्रव्य के मायने भी यही है कि हमें जैसा शरीर का बल मिला हुआ है और जिस काल में हम बैठे हुए हैं, जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, और अपने परिणाम टटोल लेना कितने उत्साह से हम उस चीज को करें, यह भी आवश्यक है। कई बार हम बहुत बड़ा तप हाथ में ले लेते हैं और उसके प्रति उतना उत्साह नहीं होता, तो शरीर की शक्ति होते हुए भी हम उसे निर्वाह नहीं कर पाते। कई बार कई लोगों के शरीर में बहुत शक्ति होती है और अपनी आत्मा के अनंत बल पर भी उनको खूब विश्वास है कि मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, अच्छा शरीर भी बढ़िया है, लेकिन नेचर ऑफ प्लेजेंट, भोगवादी दृष्टिकोण अगर है तब तो कुछ नहीं होने वाला। तब भावों में क्या होना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण है। तपस्या के लिए भाव कैसे होना चाहिए, भाव भोगवादी नहीं होनी चाहिए, भाव तो वैराग परक होना चाहिए। जिसके भाव वैराग परक हैं उसी के द्वारा तप शोभा देता है, अन्यथा फिर वो तप अगर भोगवादी दृष्टिकोण वाला कर रहा है तो उस तप के द्वारा वो क्या चाहेगा। अरे सामान्य रूप से समझने की बात है कि आज अच्छे बढ़िया उपवास कर लो, भ्याने मताई अच्छो हलवा बना के खुआ है, अब और क्या उसमें, बुंदेलखंडी में तो ऐसे ही कहते हैं, समझ में आया आपके हैं? कि आज उपवास किया लेकिन आकांक्षा क्या है, कल बढ़िया बढ़िया खाने मिलेगा, तो ये भोगवादी दृष्टिकोण हो गया कि नहीं। इसलिए भावों में क्या होना, भावों में हमेशा वैराग रहे, द्रव्य क्षेत्र काल की जैसी स्थिति है वो ध्यान में रहे, अपने शरीर का बल ध्यान में रहे, और सबसे बड़ी चीज मेरे आत्मा में तो अनंत शक्ति है, मैं चाहूं तो उसे प्रकट कर सकता हूं, और आत्मा की अनंत शक्ति इसी तपस्या के करने से प्रकट होती है। आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे और तप करने का भाव आता है, और जैसे जैसे तप करते वैसे वैसे आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के मायने क्या है, आत्मा की अनंत शक्ति पर विश्वास होना, यही तो आत्मविश्वास, मैं कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास। मैं कर ही नहीं सकता, तब तो फिर आप कर भी सकते हो तो नहीं कर पाएंगे, मन हार गया, ऐसे हारे मन से कभी तपस्या नहीं हो सकती। और भौतिक सुखों को ही सब कुछ मानने वाले भावों से भी तपस्या नहीं हो सकती। इसलिए कहना पड़ा कि शक्ति तस तपः, शक्ति तस त्याग कल कहा था, शक्ति तस तप आज अपन इसको समझ रहे हैं। और कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः, तप किसे कहेंगे? आपने तो कह दिया शक्ति तस तो समझ में आ गया, लेकिन तप किसे कहेंगे? धूप में बैठ जाने का नाम तप है क्या? क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि तपना, जैसे अपन किसी चीज को तपाते हैं, गर्म करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ तपना पड़ता होगा। नहीं, कर्म के क्षय के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब तप कहलाएगा। और समझ में आ जावे इसलिए इच्छा निरोधा तपः, जो हम अपने कर्मों के क्षय के लिए इच्छाओं का निरोध करते हैं उसका नाम है तप। अब इच्छाओं का निरोध कितने प्रकार से कर सकते हैं इसका उपाय भी आचार्यों ने बड़ा व्यवस्थित बताया। इच्छाओं का, हमें तो कोई इच्छा नहीं है, ऐसा कहना बहुत आसान है, हो गया क्या इच्छाओं का निरोध? हमारी तो कोई विशेष इच्छा नहीं। ये पता लगेगा कि 12 प्रकार के तप करने का कितना उत्साह है, उससे मालूम पड़ेगा कि आपको इच्छाओं के निरोध का जो उपाय है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इच्छा के निरोध का उपाय ना करे कोई और ये कहे कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, तो उसका वह तप नहीं माना जाएगा। और तीसरी चीज, एक पहले शक्ति तस तप और तप की परिभाषा समझ ली, और तीसरी चीज तपस्या के पीछे उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। कर्म क्षय से समझ में ना आवे तो तीन चीजें लिखी आचार्य भगवंतों ने कि मन की चंचलता मिटे सो ही तप श्रेष्ठ है, मन के विकारी परिणाम हटे सो ही तप श्रेष्ठ है, और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सो ही तप श्रेष्ठ है। मन की चंचलता, मन की विकृति और पांचों इंद्रियों को जीतना, ये जो है तपस्या का फल होना चाहिए। उद्देश्य भी यही होना चाहिए और फल भी यही होना चाहिए। तपस्या बहुत सारी करी और मन की चंचलता नहीं गई, मन के विकार नहीं गए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं हुई, तो कहते वो तपस्या कार्यकारी नहीं है, वो जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाई, वो घाटे का सौदा है। करी तो तपस्या, लेकिन उससे जैसा हमारा जीवन उज्जवल होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाएगा। ये कंडीशन है। रावण ने भी तपस्या करी थी, भारी विद्याएं सिद्ध करने के लिए तपस्या करना पड़ती, उपवास करना पड़ते हैं, उपवास किए रावण ने और तपस्या करी, लेकिन किसके लिए? मन की चंचलता रोकने के लिए, मन के विकारों को जीतने के लिए नहीं, इंद्री विजय के लिए। हाँ हाँ, इंद्री के विषय भी अच्छे मिले, और मन में विकार कौन सा है? राम के ऊपर विजय प्राप्त हो, अपने ऊपर हो जाए, जो हो जाए तो काम ही हो जाए। दुनिया भर को जीत लूं, दुनिया भर के ऊपर मेरा साम्राज्य चले, ऐसी खोटी तपस्या करने वाले सैकड़ों लोग हैं संसार में, जो सारे संसार की भोग विलास सामग्री चाहने के लिए तपस्या करते हैं कि तपस्या करूंगा तो अपार सामग्री मिलेगी, तपस्या करूंगा तो सारे संसार को अपने वश में कर लूंगा, ऐसी सैकड़ों तपस्या करने वाले लोग, उससे कोई का जीवन ऊंचा नहीं उठता। इसलिए लिखना पड़ा कि मन की चंचलता मिटे, मन के विकार हटे और इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सके, वही तपस्या श्रेष्ठ है। वो तपस्या 12 प्रकार से की जा सकती। जब भी अपन वो 12 प्रकार से तप करें तो ये ध्यान में रखें कि जो बातें मेरे जीवन में आनी चाहिए वे आई कि नहीं आई। जैसे दुकान पे तो बैठे और सुबह से शाम तक खूब ग्राहक भी आए और खूब माल बेचा, और फिर बाद में जब नफा नुकसान का हिसाब मिलाया तो नुकसान ज्यादा हुआ, नफा तो हुआ ही नहीं। तो बताओ ऐसी दुकानदारी कोई करेगा? दूसरे दिन बंद करके आ जाए घरे कि जी नहीं करना भैया दुकान, तो ऐसा ही तप के बारे में है। अगर हमारे तप से हमारे जीवन में उज्ज्वलता आती है तो ही वो तप श्रेष्ठ है, अन्यथा वो तप ही ना कहलाएगा, वो तो सिर्फ अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छी। अगर हमारा उद्देश्य निर्मल नहीं है तो जो जो भी हम क्रिया करते हैं, व्रत नियम और तपस्या इत्यादि करते हैं, वो सारी तपस्या हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाएगी। अकेले शरीर को क्रश करने वाली तपस्या का हमारे यहां पर कोई महत्व नहीं। तपस्या से शरीर क्रश हो जावे तो हो जावे, लेकिन तपस्या का लक्ष्य शरीर को क्रश करना नहीं है। तपस्या का लक्ष्य तो मन की विकृतियों को क्रश करने के, मन के दोषों को हटाने के, दोषों से निवृत्ति करने के लिए, या कि मन की चंचलता को मिटाने और इंद्रियों को अपने काबू में रखने के लिए तपस्या है। एक बाबा जी थे, हम शायद ये सुना चुके हैं शायद प्रश्नोत्तर में, तो वो वैसे वाले बाबा जी थे, मांग करके खा भी लेते थे, पर बाबा जी थे। तो वो एक बार उनके मन में आया कि दाल बाटी खाई जाए, सबको ख्याल आ गया होगा। आ गया ख्याल, कोई बात नहीं, अपन सुन तो नहीं कम से कम। तो उनको दाल बाटी खाने का मन आया, तो उन्होंने मांगा, लोगों से दाल मांगी, आटा मांगा, और शुरू कर दी बनाना नदी के किनारे पर, नदी से थोड़ा हट करके, एकदम किनारे पर नहीं, थोड़ा हट करके। तो बनाई दाल बाटी आग बाग में जैसी बनती हैं वैसी सब, और इतने बनाते बनाते में पानी हो गया खत्म लोटा का। अब क्या करें, अब एक मन कहे कि जी खा लो फिर उतर नदी में से पानी पी लेंगे, दूसरा मन कहे कि पहले पानी भर लिया और फिर खा लेंगे। पर ये वाला मन ज्यादा तेज था, क्योंकि बहुत दिन से इच्छा थी कि दाल बाटी खावे, अब इतनी भी नहीं रुक सके कि पानी भर के ले आए, नहीं खाई लो फिर पी लेंगे पानी बाद में। लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कश्मकश के बाद उनने सोचा कि नहीं पानी तो पहले ले आए। लेकिन पानी लेने जब जा रहे थे बाबा जी, तो सैकड़ों दफे मन में यही बात आई कि खा लेते, और पानी भर के लाए बाबा जी और मन बदल गया, और पानी में तो रखा ज्यों का त्यों वहीं के वहीं, और उठाई दाल बाटी और इकट्ठी करी और इतने जोर से फेंकी कि सीधी नदी में जाकर के गिरी। और फिर क्या किया, एक मुट्ठी राख उस पानी में डाली और चुपचाप पानी पी लिया और चले आगे। जो व्यक्ति देख रहा था उससे रहा नहीं गया, उसने कहा ये ऐसे बाबा जी, अरे बढ़िया से दाल बाटी बनाई थी, फिर पता नहीं क्या हो गया, पानी भर के भी ले आए थे, फिर फेंक दी, फिर पानी में राख डाली, फिर पी लिया। कहले बाबा जी जी सब आपने किया क्यों? कहले ऐसा ही मानेगा। कहते कौन मानेगा, कहते भीतर बैठा हुआ वो मन, वो ऐसा ही मानेगा, मनमानी कर रहा था। मैं कह रहा था कि पानी भर के लाऊं तो 17 बार खा लो, अब आप चुप है, अब आप कुछ नहीं कहेगा, अब शांत है, नहीं मिली, अब करो क्या करते। हां अगर मनमानी करते रहेंगे तो कभी तपस्या नहीं होने वाली। तपस्या के लिए भी मन पर विजय पानी पड़ेगी और तपस्या से भी मन पर विजय होगी, दोनों ही चीजें हैं। मन को काबू में रख के ही तपस्या हो सकेगी और तपस्या के फलस्वरूप ही मन काबू में होगा, साइमल्टेनियस होने वाली प्रक्रिया है। जैसे यथा यथा समायाति, अपन ने पहले समझा कि जैसे जैसे आत्म तत्व का बोध होता है वैसे वैसे विषयों से विरक्ति होती, और जैसे जैसे विषयों से विरक्ति होती वैसे वैसे आत्म संवित्त, वैसे वैसे आत्म तत्व का बोध, इसी भावना से तपस्या करनी चाहिए। तो एक चीज अपन को क्लियर हो गई कि तपस्या का उद्देश्य अपने मन को वश में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना। और हम क्रम क्रम से देखते चले जाएं, हम उपवास करते हैं, अनशन नाम का तप है, अर्थ यही है कि भोजन की इच्छा ना होना, अनेशन, अनशन के मायने लंघन नहीं है। चार प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन है, लेकिन उसके साथ अंतरंग में कौन से परिणाम हैं? भोजन की इच्छा ही नहीं है, आज तो मेरी धर्म ध्यान और स्वाध्याय करने की खूब भावना है, सो दिन भर वो ही करूंगा। आज तो जो है भोजन का ना विकल्प है मन में, ना बनाने का, ना खाने का, ना दूसरे को खिलाने का भी, हम तो शांति से अपना आज धर्म ध्यान करेंगे। आज भोजन की इच्छा नहीं है, आज भोजन के प्रति विरक्ति है। ऐसे विरक्ति के साथ जो अनशन या उपवास जिसको कहते हैं वो किया जाए तो वही तप कहलाएगा। और वैसे वैसे सुबह से शाम तक कई लोगों को भोजन नहीं मिलता तो उनका वो अनशन थोड़ी कहलाए, वो तो लंघन कहलाएगी। लंघन और अनशन तप में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा कर्मों का क्षय हो, परिणामों की निर्मलता हो, मिटे तो कहलाएगा वही तप। वही भोजन नहीं करना तप बन गया, और वही भोजन नहीं करना संसार का कारण बन सकता, संक्लेश का कारण बन सकता। अहंकार और संक्लेश दोनों से रहित होना चाहिए तप, सात्विक तप होना चाहिए, तभी तप श्रेष्ठ है। अनशन के बाद रखा है कि भूख से कम खाना और ज्यादा कठिन, एक के बाद एक कठिन चीजें हैं। अनशन के बाद कठिन है ऊनोदर, सारा सामान सामने रखा है, सब खाया जा सकता है, लेकिन इतना ही लेऊंगा, दो ग्रास ही खाऊंगा। एक ग्रास सबसे उत्कृष्ट अवमोदरी है, और या कि पूरा भोजन करने में एक ग्रास कम खाया तब भी वो भी तप है। क्यों? उस एक ग्रास के बाद ही तृप्ति होती, एक और खाने की इच्छा थी लेकिन छोड़ दिया, नहीं नहीं खाएंगे, इच्छा का निरोध हो गया, तप हो गया। देखूं तो मेरा आत्मविश्वास कितना है, इसके लिए ये ओमोदरी है, या कि एक ग्रास लेकर के आ जावे। शुरू में जब हम लोग को दीक्षा दी थी आचार्य श्री ने 1981 में, तब इसी तरह की 12 तप करके देखना, एक एक दिन भले ही करो, तब जिस दिन एक ग्रास अकेला, और वो भी तय नहीं करेंगे, सारा सामान ज्यों का त्यों रखा, श्रावक बड़े प्रसन्न के कुछ नहीं निकाला आज तो, सब ले रहे, मजा है, कुछ भी नहीं निकालेंगे थाली में, और बस खड़े हुए, पहले नंबर जो भी दिया जाएगा, एक अंजुली पानी दिया तो पानी पिया और बैठ गए, सबसे उत्कृष्ट। हाँ, ऐसे जैसे कि गरम तवा पर एक बूंद डालो तो छन्न हो जाती, हाँ ऐसे ही लगता है। उस समय तवाचार्य श्री दिन भर पूछते थे, अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, उपवास की अपेक्षा इसमें कैसा लगा? तो उपवास से कठिन है, कहते हाँ कठिन है। उपवास में तो ठीक है कि संकल्प ही कर लिया कि अब करना ही नहीं है, मन बना लिया पहले से ही, जाने ही नहीं, ने देखे ने भौंके, भोजन ही नहीं देखा, लेकिन भोजन सामने है और अंदर उदीर्णा हो गई क्षुधा वेदनी की, और एक ग्रास डालने से और उदीर्णा हो गई, उदीर्णा होने के बाद भी खाली वापिस लौट आओ और दिन भर शांत परिणाम रखो, समता भाव रखो। इसलिए अवमोदरी भी तप हो गया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर और कठिन है, वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान तप कब होता है? जब ऐसी अटपटी शर्त रख लेते हैं कि उस दिन आहार ना मिले, सबसे श्रेष्ठ वृत्ति परिसंख्यान वो कहलाता है। समय सागर जी महाराज ने ईसरी में वृत्ति, आचार्य श्री की परमिशन के बिना किसी को वृत्ति परिसंख्यान लेने का अभी तक प्रावधान नहीं है हम लोगों को, अभी सिर्फ दो लोगों को वृत्ति परिसंख्यान लेने का मिला, हमसे बड़े समय सागर जी महाराज और योग सागर जी, दो ही लोगों को, और वे एक जगह से लौटेंगे तो दूसरी जगह नहीं जाएंगे फिर। हाँ, ये दोनों ही जन, अभी आचार्य और दो महाराज, बाकी किसी को नहीं। हम तो एक जगह से कुछ गड़बड़ हो गई तो लौट के दूसरे में चले गए, दूसरे में गड़बड़ हो गई तीसरे में चले गए, फिर तीसरे से लौटे तो घरे आ जाए, मतलब मंदिर में आ जाए, अभी इतना ही है। वो तो एक से लौटे तो वापस, ये कठिन चीजें हैं। वृत्ति परिसंख्यान वो है जिसमें ऐसी अटपटी शर्त सोच ली कि मिले ही नहीं, अलाभ परिचय सहित वृत्ति परिसंख्यान, उस दिन अलाभ हो गया। अब देखो अवमोदरी में तो एक ग्रास भीतर गया था, इसमें तो सब जगह घूमे। शुद्धि करते ही साथ मन बन जाता है आहार करने का, जैसे नहाते ही साथ मन बन जाता आहार करने का। शुद्धि करी, आहार का मन हो गया, गए थे उसी निमित्त से, लेकिन ऐसी अटपट्टी ले ली कि मिले नहीं, सोचे ही के गए कि मिले नहीं, मिलने ही नहीं चाहिए, ऐसी लेंगे। वही वृत्ति पर संख्यान सबसे श्रेष्ठ है, तप के रूप में जब ग्रहण किया जाए। ऐसे सामान्य रूप से लेना अलग बात है, वो तप नहीं कहलाएगा। तप कब कहलाएगा? जबकि ऐसी अटपटी के मिले नहीं और वापस आ गए, उस दिन पूरे दिन लाभ नहीं हुआ। गए थे आहार के लिए, सब जगह घूमे, इतनी मेहनत करी, सारे चौकों के सामने से निकले, अब और ज्यादा कठिन हो गया। वृत्ति पर संख्यान में भी आहार नहीं हुआ, देखो अवमोदरी में एक ग्रास लिया और उपवास में तो बिल्कुल नहीं लिया, सब में देखो, लेकिन क्या अलग अलग विशेषता है, अलग अलग कर्मों की निर्जरा के लिए उपाय हैं ये तप करने के। तो जब समय सागर जी महाराज ने लिया तो हम लोगों ने चुपचाप उनसे पूछा कि आज आपने क्या क्या सोचा था और चले गए कि ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो कह ले, हमने मालूम क्या सोचा, हंसने लगे बहुत, हमने सोचा कि जिस चौके के पास में एक व्यक्ति हाथी के ऊपर किताब पढ़ते बैठा हो, बोलता क्या वहां पर कहा, वहां कहा हाथी और वहां पर कहा किताब, मिलने ही नहीं, सोच के गए थे कि मिलेगी नहीं, और एक चक्कर लगाया और आकर के बैठ गए। ये वृत्ति परिसंख्यान, एक दिन को लिया जाता, दो दिन को, चार दिन को, जब तक नहीं मिले तब तक के लिए। वृत्ति पर संख्यान तप है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से, एक दिन, दो दिन, पांच दिन, जितनी सामर्थ्य, या अनिश्चित काल के लिए भी, अनवधत और अवधत दो प्रकार का तप होता है। कोई भी तप होगा वो दो प्रकार से, एक सीमा, एक दो दिन के लिए करना, या कि जीवन पर्यंत करना। इस तरह फिर चौथे नंबर से भी कठिन रस परित्याग, पूरा भोजन करके आओ बच्चू, लेकिन रस एक भी नहीं। बच्चू मतलब मन को कह रहा है अपन अपने, हाँ, क्योंकि यही तो कहता कि उठो चलो, ये लेंगे वो लेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, तो इसको कहते कि ऐसे नहीं, तुम्हें मैंने जो सोचा है वही दूंगा। पूरा भोजन करना पड़ेगा, रूखी रोटी खाना पड़ेगी, बिना घी की, बिना नमक का, शक्कर भी नहीं मिलेगी, दूध भी नहीं मिलेगा, दही भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। छह रस होते हैं, उसमें से एक भी नहीं मिलेगा, फिर भी पूरा पेट भर करके आना, ऐसे नहीं चलेगा काम। शिव सागर जी आचार्य महाराज के संग में एक छुल्लक जी थे, वो पहले मीठा बनाने का काम करते थे, मिष्ठान हलवाई का काम करते थे, फिर वो बन गए। अब उनसे तो अच्छी अच्छी चीजें खाई उनने, तो वो एक अम्मा जी के यहां चले गए वो आहार के लिए, उनके यहां पर तो वैसा कुछ था नहीं, रस युक्त नहीं था, नीरस आहार था, तो थोड़ा बहुत एक आध दो रोटी खाई और चले गए। तो वो अम्मा जी आकर के आचार्य महाराज से बोली कि छुल्लक जी ने तो आज कुछ भी भोजन नहीं किया। आचार्य महाराज समझ गए, उन्होंने कहा इधर आओ छुल्लक जी, आज तो उनोदर कर लिया क्या, उनोदर कर लिया क्या? तो कहते नहीं महाराज, कहते प्रायश्चित ले लो। अब सारे लोग दंग हैं, किस बात का प्रायश्चित? प्रायश्चित इस बात का कि तुम्हारे अंदर खाने की आसक्ति बहुत थी पर तुम्हारे योग नहीं मिला, इसलिए कमती खा के आए। प्रायश्चित कर, पूरा पेट भर के खा के आना, नीरस भोजन, बड़ी तपस्या का काम। इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें एक एक बार करके देख चुके हैं, बड़ी कठिन काम। इसमें भीतर जाता नहीं और भीतर तो जाने देना पड़ेगा, पेट जब तक नहीं भरेगा तब तक डालना पड़ेगा, जैसे गड्ढे में भरते हैं वैसे ही भरना पड़ेगा। ये तो जिह्वा गवाह नहीं देती, पर नहीं, जितनी आठ रोटी खा के आते थे उतने ही पूरी खाओ, जितनी कल कल खाई थी उतने, लेकिन बिना घी वाली मिलेंगी, वो नमक में नहीं रहे उसमें, सब चीज ज्यों की त्यों, पर बस रस गायब उसमें से। बड़ा कठिन इसलिए। लेकिन क्यों कर रहे हैं अपन? अपने आप को तकलीफ देने के लिए नहीं, अपने आत्मविश्वास को कि कभी अगर रस नहीं मिले तो आकुलता ना हो। रोज रोज वह चीज जो अपने जीवन में शामिल हो जाती, एक दिन उसका अभाव हो तो मालूम पड़ता है कि कैसा लग रहा है। तब उसमें समता भाव रखने के लिए इससे क्या होगा, कर्मों की निर्जरा होती है भैया, उसके लिए है ये तपस्या। फिर वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और फिर विविक्त सैयासन। सैया और आसन अपरिचित स्थान है और एकाकी होकर के नींद ले बताओ, निर्जन स्थान में जहां अपना कोई नहीं है, अपरिचित स्थान है, नींद नहीं लगेगी। जैसे अपन नई जगह जाके सो जावे तो 10 बार नींद खुलती उसमें कि कोई गड़बड़ तो नहीं, सामान तो नहीं ले जाएगा कोई है? वो कहते विविक्त सैयासन, सैया और आसन ऐसे स्थान पर जहां की निर्जन हो, वो भी तपस्या का एक अंग है। हाँ, निर्जन वन में जाकर के और तपस्या एक दिन दो दिन, और वहीं पर शयन करेंगे, वहीं पर स्वाध्याय करेंगे, और इससे क्या होगा, अपने एकाकी होने का अनुभव होगा और इससे अपना आत्मबल बढ़ेगा। ये भी तप का एक तरीका है, काय क्लेश नाम का तप है। शरीर को कष्ट देना ये नहीं समझना, शरीर पर आने वाले कष्टों को शांत भाव से सहन करना। और शरीर पर कष्ट ऐसे थोड़ी आएंगे कि ऐसे ही आ जाएंगे, अपने मन से ही आ जाएंगे, नहीं। शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो चीजें कष्टकारी मालूम पड़ती हैं वो करना पड़ेंगी, और जैसे ही वो कष्टकारी चीजें करेंगे तो सहन करने की सामर्थ्य भी बढ़ेगी। तो कष्ट सहिष्णु होना, मन की सहनशीलता और शरीर की सहनशीलता और वाणी की सहनशीलता, तीनों चीजें सिखाता है तप। विनोबा ने जब भूदान यज्ञ के लिए अपनी यात्रा शुरू की, 40,000 किलोमीटर चले, तब उन्होंने लिखा कि मैं बहुत रफ एंड टफ था, मेरी वाणी इतनी अधिक कभी कभी दूसरे को चोट पहुंचाने वाली होती थी कि मैं खुद दंग रह जाता था। मृदु वाणी तो मेरी थी नहीं, किसी के प्रति दया तो मेरे अन में बहुत कम आती थी, लेकिन जब मैंने ये यात्रा की और गरीब से गरीब व्यक्ति से और दुखी से दुखी व्यक्ति से जब मिला, उनके घर में रुका, उनके अभाव जब मैंने देखे, तब प्राणी मात्र के प्रति मेरे मन में दया का भाव, मेरी वाणी में मृदुता अपने आप आना शुरू हो गई। तपस्या ये काम करती है, मन को सहनशील बनाती है, शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाती है, वाणी को मृदु बना दे। अगर ठीक ढंग से तपस्या करी गई, उद्देश्य तपस्या का यह होना चाहिए। इस तरह ये बाह्य तप हैं, बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम नहीं, बाह्यम तपः परम दुश्चरमाश्चरंस्त माध्यात्मिकस्य तपसः परिव्रंगणार्थम। ये बाह्य तप हे भगवान आपने भी किए हैं, लेकिन काहे के लिए, अभ्यंतर तपों की वृद्धि के लिए। देखो ये सब बाह्य तप हैं, अभी तो अंतरंग तप की चर्चा ही नहीं की अपन ने। अंतरंग तप में तो प्रायश्चित, विनय, बैयाव्रत, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। बाह्य तप में शरीर, मन, ये सब धीरे धीरे काबू में आना शुरू होते हैं। मन की निर्मलता बढ़ती है तब अंतरंग तप आसान हो जाते हैं। हालांकि अंतरंग तप भी मन की निर्मलता के लिए है, लेकिन अत्यंत निर्मलता बढ़ने पर, क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने दोषों को दूसरे के सामने कहे, इतनी विनय, इतनी निर्मलता परिणामों की, बड़ा कठिन है। और फिर बाद में अपने दोष का जो प्रायश्चित है उसको सहर स्वीकार कर ले, अरे भैया तपस्या है बहुत बड़ी। ऐसे नहीं है कि महाराज हमसे गलती हो गई, कछु एक आध माला दे दो, नहीं। अंतो अंतो डज्जमी पच्छत्ता वेण वेदंतो, मैं अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूं, मेरे चित्त को निर्मल करने की प्रक्रिया बता दो। वो है प्रायश्चित, दंडित करने की प्रक्रिया नहीं है प्रायश्चित। प्रायश्चित चित्त की निर्मलता की प्रक्रिया है, इसलिए की जाती है। तब ये अंतरंग तप है। बहुत मन निर्मल होना चाहिए। उसमें लिखा है कि प्राश्चित वही ले सकता है जिसका चित्त बालक के समान है, जो कि अपने कपड़े गंदे हो जाने पर जो माँ ने पहनाए थे अब भी के खराब करोगे तो बहुत पिटोगे, और सीधे गए और खेलने लगी गेंद और गेंद गई नाली में, सोठा के फेंकी सो पूरी पीठ पे छप गई। अब थोड़ा तो लगा डर, लेकिन कपड़े हैं सब गंदे और भीतर घर में घुसेंगे जैसे ही सो माँ देख लेगी तो कुछ नहीं, डरने डरने की बात नहीं। सीधे जाके माँ के सामने खड़े हो गए कि जे हो गए खराब, अब जैसे करने हो सो करो, बदलने हो तो बदलो, नहीं हम जे ही पहने घूमत रहे, और अब भाई बाहर से लोग आएंगे सो कहेंगे कौन करता है इतना गंदा फिरता रहता है। आप जानो ऐसे ही बालक जैसे कि माँ के सामने जाकर के सरल चित्त से बता देता कि ऐसा हो गया, ऐसे ही गुरु के सम्मुख जाकर के और अपने दोषों को रख देता कि ऐसा हो गया, अब आप जानो आप जैसा कहो वैसा करूंगा, जिससे कि मेरा अब ये दोष निवृत्त, दोषों की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित नाम का तप विनय, ये भी तपस्या है। अपन तो लोकानुवृत्ति नाम की विनय कर लेते हैं, भयवश विनय कर लेते हैं, अपने विषय कषायों के पोषण के लिए विनय कर लेते हैं, अपना काम सट जावे अपने स्वार्थ से विनय कर लेते हैं, कहते ऐसे नहीं। विनय कौन सी करना, ज्ञान की, दर्शन की, तपस्या, तपस्वी जनों की, दूसरे की श्रद्धा देख करके झुक जाना कि वाह आपकी श्रद्धा कितनी बढ़िया, आपका ज्ञान कितना अच्छा है, आपका आचरण कितना निर्मल है और आप हमारे लिए पूज्य हैं, ऐसे मन गदगद हो जावे और तब हमारे भीतर जो भाव उत्पन्न होता है विनम्रता का, नम्रता का, वो कहलाएगी विनय नाम का तप। ये अपन समझ चुके हैं, भैया वृत्ति भी समझ चुके हैं, जिसमें कि हम जो त्यागी वृत्ति हैं उन पर आने वाली विपत्ति को दूर करने के लिए यथा संभव प्रयत्न करते हैं, उनके अनुसार आचरण करने लगते हैं, वही हमारा भैया वृत्ति नाम। सेवा सबसे बड़ी ये है कि भगवान की अगर सेवा कर रहे तो भगवान ही बन जाओ, वही सबसे बड़ी सेवा है। रत्नत्रय की सेवा यह है कि स्वयं रत्नत्रय धारण कर लो, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती रत्नत्रय की। ज्ञान की सेवा यह है कि आप अपने जीवन में ज्ञान अर्जित कर लो, तो जिनवाणी की सेवा हो गई अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना, तो ऐसी भैयावृत्ति। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आ गया, प्रायश्चित विनय भैयावृत्त स्वाध्याय। हाँ, अपने आत्मा को निकट से जानना, इसका नाम है स्वाध्याय। किताब पढ़ने का नाम तो है ही स्वाध्याय, वो तप नहीं कहलाएगा, तप कब कहलाएगा, जबकि वाचना किसको, अपने जीवन को वाचना, जैसा शास्त्र में लिखा वैसा अपने भीतर झांक करके देखना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है आज कितना किया, अहंकार नहीं करना चाहिए आज कितना किया, जीता कि नहीं अहंकार, जीता कि नहीं क्रोध, ये कहलाएगा। पूछना अपने आप से कि हो तो बहुत होशियार, बातें तो होशियारी की करते हो, लेकिन जीवन तो ऐसा है, पूछो अपने आप से। प्रश्नना, शास्त्र के प्रश्न पूछना भी प्रश्नना है भैया, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं शास्त्र में जो बातें कठिन मालूम पड़ती हैं वो बहुश्रुतवान से पूछना, ये भी स्वाध्याय का ढंग है, प्रश्नना नाम का। अपन शाम को रोज बैठते हैं, दोपहर में बैठते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तपस्या कब कहलाएगी, जब अपने आप से प्रश्न करना कि सब जान बूझ करके भी अंधे क्यों बने हो। पूछो अपने आप से कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्यों जीवन जीता हूं ऐसा बुरा जीवन जिसको मैं स्वयं बुरा समझता हूं, और बार बार इस बात का विचार करना कि मैं कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाऊं। और जो शास्त्र में अच्छी बातें हैं उनको हमेशा स्मरण में बनाए रखना, बार बार दोहराते रहना अच्छी बातों को, और जब भी दूसरे को समझाने का मन हो तो दूसरे को नहीं, अपना कान पकड़ के अपने को उपदेश देना, धर्मोपदेश, पहले सब चीजें अपने पर फिर बाद में दूसरे पर, तब कहलाएगा था तब। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं पढ़ंता दुनिया में, बहुत किताबें हैं लोगों के पास में पढ़वे के लिए, खूब पढ़ते हैं 24 घंटे, उससे नहीं, वो तप नहीं कहलाएगा, तब कहलाएगा जबकि जीवन में वो सारी बातें आना शुरू हो जाए स्वाध्याय से। और वित्सर्ग अपने शरीर से ममत्व छोड़ करके पंच परमेश जी का स्मरण करना एक निश्चित समय के लिए या जीवन भर के लिए वित्सर्ग है। और ध्यान, धर्म ध्यान, आर ध्यान रोध ध्यान से बचना, धर्म ध्यान करना। धर्म ध्यान मतलब जिसमें मन अच्छा हो, क्रिया अच्छी हो, वाणी अच्छी हो, वो सब धर्म ध्यान। अपन सोचते कि अलती पलती मार के आंख मीच के बैठ जाए वो कोने में, सो होगा ध्यान। इतना आसान नहीं है, ऐसा होता होता तो बहुत लोगों को आसानी से हो जाता, ये तो नहीं। आर ध्यान रोध ध्यान से बचना, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, आगे क्या होगा इस बात की चिंता खाई जा रही है, दिन निकल रहा, बैठे भैया बिल्कुल साते हैं उते कोने में, ऐसे बैठे कि इनसे ज्यादा सज्जन कोई नहीं है, लेकिन भीतर भीतर चल रही गुणाभाग, हाँ, उससे बचना। दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके भीतर आनंदित नहीं होना, झूठी बोल के आनंदित नहीं होना, परिग्रह जोड़ जोड़ के रखने में आनंद नहीं मानना, ये सब चीजें अगर हमारे भीतर से जब चली जावे और थोड़ी देर को मन जो है जब इनसे रहित हो जावे तब वो कहलाएगा धर्म ध्यान। पंच परमेश जी का स्मरण करना, अच्छे विचार करना, अच्छी क्रिया करना और अच्छी वाणी बोलना, यही जो है ध्यान में शामिल होगा धर्म ध्यान। इसी तरह से वो भी ठीक है कि अपन सुबह शाम दोपहर बैठेंगे, मन को स्थिर नहीं कर पाए तो कम से कम शरीर स्थिर करेंगे, वाणी से मौन रहेंगे और फिर मन को पंच परमेष्ठी में एकाग्र करेंगे। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, मन को हम जब एकाग्र कर लेते हैं अपने आत्मस्वरूप पर या पंच परमेष्ठी पर, वो इस तरह से 12 तप। लेकिन ये सारे तप परोपकार की भावना से होना चाहिए। अब आखिरी बात इतनी और, तब तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, मेरा कल्याण तो होगा ही लेकिन प्राणी मात्र का कल्याण हो इसके लिए तपस्या कर, स्वयं के कल्याण के साथ साथ परोपकार की भावना से भी तप हो सकता है क्या? होता ही है। आचार्य महाराज का तप आज हम लोगों के लिए कितना लाभ दे रहा कि नहीं दे रहा? ये उनका तप परोपकारी तप है कि नहीं? दूसरे का उपकार हो रहा कि नहीं? वो तपस्या कर रहे हैं और उपकार, आज हम कहीं भी उनका नाम ले देवे तो चाय जैसे होवे सिर आंखों पर उठ जाते, ये क्या है? उनके तप का फल हम पा रहे हैं, वे तो पा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के कर्मों का फल पावे, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका असर पड़ता है कि नहीं, निमित्त बनते कि नहीं बनते। और इतना ही नहीं, जब दीक्षा दी तो 16 कारण यही समय था, तब आचार्य श्री ने स्वयं, अपन को तो पता ही नहीं था, एक दिन पहले भी नहीं पता था कि दीक्षा दे देंगे, और आचार्य श्री ने शुरू कर दिया 16 कारण में, एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार। ठीक है, आचार्य श्री कर रहे हैं तपस्या, कब तक चलेगी? एक महीना चलेगा अब तो ये मामला। और उसी बीच में दीक्षाएं दे दी। जब दीक्षाओं के बाद 10 लक्षण के बाद आचार्य श्री से पूछा कि महाराज इस बार तो आपने और पहली बार देखा कि ये 16 कारण वगैरह किए, बोले हाँ बड़ा काम करना था इसलिए मुझे स्वयं पहले ये तप करना आवश्यक है, दीक्षाएं देने का काम करना था इसलिए मुझे स्वयं पहले तप करना अनिवार्य था। ये कहलाता है परोपकार के लिए किया गया तप, जिससे कि परोपकार हो रहा, आत्मा का उपकार तो हो ही रहा है, अपने अपने आत्मा के उत्थान के लिए किया, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए किया, लेकिन उससे दूसरे का भी उपकार हो। तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से मैं तप करूं, आत्म कल्याण की भावना तो बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो आप एकदम उसके अर्थ वैसे ले लो, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आत्म कल्याण की भावना तो है ही, लेकिन इस तरह से करना जिससे कि उपकार हो। और निश्चित है कि जो आत्म कल्याण की भावना से करेगा उससे दूसरे का उपकार हुए बिना नहीं रहेगा, और जो दूसरे के उपकार की भावना से करेगा उससे भी आत्म कल्याण हुए बिना नहीं। ये दोनों चीजें जो है तपस्या के लिए ध्यान में रखने की हैं। तपस्या तो ऐसी है भैया, जैसे कि हरा वाला आम लगा रहता ना, हरा आम तो खाओ तो खटमिटा लगता है, और रंग भी देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, और दबाओ तो बड़ा कड़ा रहता, वो पक जावे अगर तो, पक जावे तो मीठा रस मिलता, दबाओ तो मुलायम हो जाता और देखने में बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता। ऐसे ही तपस्या करने से जीवन में आती है सरसता, जीवन में आता है मुलायम पना। होती तो तपस्या कठोर है लेकिन जीवन हो जाता नरम। करते हैं कठोर तपस्या, जीवन होता नरम और उज्जवल भी होता चला जाता और सरस भी होता चला जाता। जैसे कि आम पक करके सरस भी होता, उज्जवल भी हो जाता और मुलायम भी हो जाता, ऐसे ही तपस्या का भी फल है। इसलिए अपन को इस तपस्या को अपने कर्मों के क्षय के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से अगर करेंगे तो जीवन अवश्य अपना भी ऊंचा उठेगा। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अपनी शक्ति को पहचान करके अवश्य जो है वो तप करना चाहिए। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्ध दर्शन करने वाला है। वावग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर जाला दीवानी मानो धड़कियों भूल चढ़िया, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की गलियां।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग श्री विद्यासागर जी महाराज के, संगस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, श्री भव्य सागर जी महाराज के चरण कमलों की पूजा अनर्पक प्राप्त है।